समर्थ ने नंदिनी की बात सुनते ही धीमी आवाज में कहा, हाँ वो एक्चुअली इतना सारा काम था और सब कुछ उसे अकेले ही देखना था, इस वजह से शायद वो थोड़ा थक गया होगा। नंदिनी समर्थ की तरफ देख रही थी, तभी इप्सिता की माँ ने समर्थ को बुलाया। वो उनकी ओर देखते हुए बोला, आया आंटी। इतना कहकर वो सीधे इप्सिता की माँ के पास चला गया। उसका फोन नंदिनी के हाथ में ही था। इप्सिता नंदिनी की तरफ देख रही थी। नंदिनी उसके बगल में बैठी और उसने अभिमन्यु की फोटो को जूम करते हुए कहा, वैसे मानना पड़ेगा, जीजू जितने स्मार्ट हैं उनका दोस्त भी उतना ही ज्यादा स्मार्ट है। चुप करो तुम, अभी अगर समर्थ ने सुन लिया तो वो क्या सोचेंगे, इप्सिता ने धीमी आवाज में कहा। नंदिनी ने लापरवाही से कहा, अरे सुनते हैं तो सुन ले, मैं तो वैसे भी उनसे अपने दिल की बात कहने के लिए मरी जा रही हूँ। इप्सिता नंदिनी की ये बात सुनकर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। तभी नंदिनी ने कहा, इतना हैरान होकर देखने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मैंने तुझसे पहले ही कहा था मैं तो समर्थ पर फुल ट्राई करने वाली हूँ। प्लीज अब तो मुझे रोकना मत, क्योंकि मैं जानती हूँ अभी तेरी शादी तक ही मेरे पास टाइम है। मैं सोच रही हूँ कि अपने दिल की बात बोल ही दूँ, वरना पता नहीं दोबारा मौका मिले या ना मिले। इप्सिता नंदिनी के चेहरे की तरफ देख रही थी। उसे देखकर ऐसा लग ही रहा था कि वो समर्थ से कुछ ना कुछ तो बोल ही देगी। वो नंदिनी का हाथ पकड़ते हुए बोली, देखो तुम प्लीज कोई गड़बड़ मत करना, तुम्हें जो भी करना हो सोच समझ कर करना। मैं तो कह रही हूँ कि इतनी जल्दबाजी में तुम कोई भी फैसला मत लो, क्योंकि इस तरह की जल्दबाजी के काम हमेशा गड़बड़ ही करते हैं। रिलेशनशिप हो या फिर कोई भी दूसरा रिश्ता, अगर वो धीरे धीरे ही शुरू होता है तो ही ठीक होता है। इतनी जल्दबाजी में की गई कोई भी चीज ज्यादा दिनों तक नहीं चलती। इप्सिता बोल ही रही थी कि नंदिनी ने उसे चुप करवाते हुए कहा, हाँ मैं जानती हूँ बाबा, और वैसे भी मैं कौन सा उसे आज शादी करने जा रही हूँ, तू बेकार में ही परेशान हो रही है। इप्सिता वहीं बैठी थी। तभी कुछ लड़कियां इप्सिता के पास आईं और बोली, हम आपके साथ फोटो क्लिक कर लें एक। इप्सिता ने धीरे से अपना सिर हिलाया। नंदिनी ने कहा, तू आराम से यहीं बैठ और सबके साथ फोटो क्लिक करवा, मैं समर्थ को उनका फोन देकर आती हूँ और अपने दिल की बात बताती हूँ, देखती हूँ क्या रिएक्शन होता है। वैसे मेरे जैसी इतनी स्मार्ट और हॉट ब्यूटी को कोई मना तो करेगा नहीं, बट फिर भी एक बार पूछ कर देख लेती हूँ। इप्सिता नंदिनी की ये बात सुनकर कुछ भी नहीं बोली। वो सीधे स्टेज से नीचे उतरकर इधर उधर समर्थ को देखने लगी। इप्सिता उन लड़कियों के साथ पिक क्लिक कर रही थी। तभी इप्सिता ने अपने मन में कहा, ओ गॉड, बस नंदिनी कोई प्रॉब्लम क्रिएट मत करना दे, वैसे भी ये लड़की हर चीज को इतनी जल्दबाजी में करने की कोशिश करती है कि मैं क्या ही करूं इस लड़की का। नंदिनी ने समर्थ का फोन अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। आगे बढ़ते हुए उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कहीं भी समर्थ नजर नहीं आया। तभी उसने देखा कि समर्थ इप्सिता की माँ से खड़े होकर कुछ बातें कर रहा था। उसे देखकर नंदिनी ने कहा, अभी तो ये आंटी से बात कर रहा है, अभी तो मैं इसके पास जाकर कुछ बोल भी नहीं पाऊंगी। नंदिनी वहीं पर रुककर इप्सिता की माँ के वहाँ से जाने का इंतजार करने लगी। जैसे ही इप्सिता की माँ वहाँ से गई, वो भागते हुए समर्थ के पास गई और बोली, समर्थ। समर्थ नंदिनी की आवाज़ सुनकर पीछे मुड़ा। उसने नंदिनी की ओर देखते हुए कहा, यस, क्या हुआ, आप यहाँ? नंदिनी समर्थ के चेहरे की तरफ देख रही थी। वो उसे देखकर अपने मन में बोली, यार ये करीब से तो और भी ज्यादा हैंडसम लगता है। नंदिनी चुपचाप अपने मन में बात बोल रही थी और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती ही जा रही थी। तभी समर्थ एक कदम आगे बढ़ा। उसने नंदिनी की आंखों के आगे अपना हाथ हिलाते हुए कहा, व्हाट हैपेंड, आप ठीक तो है ना? नंदिनी ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, एक्चुअली वो हमें आपसे कुछ कहना था। हाँ बोलिए ना, क्या कहना है आपको, समर्थ ने कहा। नंदिनी समर्थ की तरफ देखकर अपने मन में बोली, कैसे बताऊं मैं आपको मिस्टर समर्थ कि आप मुझे कितने पसंद आ गए हैं। इप्सिता के सामने तो इतनी कूल बनकर आ गई मैं, लेकिन अब देखो समझ नहीं आ रहा कि क्या बोलूं, कहां से शुरुआत करूं। समर्थ ने नंदिनी की तरफ देखते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, क्या हुआ, आपको कुछ कहना था? नंदिनी के हाथ में समर्थ का फोन था। वो अपना फोन देखते हुए बोला, ओ अच्छा, तो आप मुझे मेरा फोन वापस करने आई हैं, थैंक यू सो मच, मुझे ऐसे ही चीजें भूलने की आदत है, मैं जाने कितनी बार भूल चुका हूँ मोबाइल फोन तो, और बाकी चीजें भी। इतना बोलकर उसने अपना मोबाइल फोन लेने के लिए खुद ही हाथ आगे बढ़ा दिया। नंदिनी उसके फोन को उसके हाथ पर रखते हुए बोली, हाँ एक्चुअली वो हम आपको फोन देने आए थे, लेकिन हमें आपसे कुछ और भी कहना था। नंदिनी के हाथ से मोबाइल फोन लेकर समर्थ ने जेब में रखते हुए कहा, हाँ बोलिए। नंदिनी समर्थ की बात सुनकर कुछ बोलने चाह ही रही थी। तभी इप्सिता की माँ ने नंदिनी को आवाज लगाते हुए कहा, नंदिनी बेटा जरा इधर आना। जैसे ही नंदिनी ने इप्सिता की माँ की आवाज सुनी, वो चौंक गई। वो उनकी तरफ देखते हुए बोली, जी आंटी। उनके इस तरह बीच में बुला लेने की वजह से वो समर्थ से अपनी मन की बात बोल ही नहीं पाई और बहुत ज्यादा निराश हो गई। नंदिनी ने अपने मन में कहा, शिट यार, ये आंटी को भी अभी आवाज लगानी थी, लेकिन ये सब कुछ उसने बस अपने मन में कहा। सामने से वो कुछ नहीं बोली और वो चुपचाप वहां से उनकी तरफ चली गई। उन्होंने नंदिनी को अपने पास बुलाते हुए कहा, आप यहाँ क्या कर रही हो? नंदिनी, हमने आपसे कहा था कि आप इप्सिता के साथ रहिएगा, देखिए वो स्टेज पर अकेली है, जाइए, और थोड़ी देर की ही बात है, वो कुछ देर ही यहाँ पर रहेंगी, उसके बाद उन्हें ऊपर वाले रूम में लेकर चली जाना, बहुत देर हो गई है उसे यहाँ पर बैठे हुए, वो थक जाएगी। नंदिनी ने धीरे से अपना सिर हिलाया और वो इप्सिता के बगल में जाकर बैठ गई। नंदिनी का मुंह बना हुआ था, उसे देखते ही इप्सिता समझ गई कि कुछ तो हुआ था, इसलिए उसने पूछा, क्या हुआ, समर्थ से तुम्हारी बात हुई या नहीं? नंदिनी ने नामे अपना सिर हिलाते हुए कहा, हम उनसे बात कर ही रहे थे कि तभी आंटी ने हमें बुलाकर तुम्हारे पास भेज दिया, हम समर्थ से कुछ कह ही नहीं पाए।
इप्सिता नंदिनी को ऐसे बच्चों की तरह नाराज होते देखकर बोली, ओहो, तो इतनी छोटी सी बात के लिए तो मुंह बनाकर बैठ गई हो। कोई बात नहीं, वैसे भी अभी तो अर्पिता और समर्थ दोनों ही यहाँ हैं। इसका मतलब वो लोग अभी कुछ देर और यहाँ रुकेंगे, तो अभी तुम्हारे पास एक और मौका है, तुम कुछ देर के बाद बोल देना उसे। नंदिनी ने जैसे ही इप्सिता की बात सुनी, उसने उसकी तरफ देखा, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने नंदिनी को मुस्कुराते देखकर धीरे से अपना सिर हिलाया। नंदिनी उसे साइड से गले लगाते हुए बोली, थैंक यू यार, तू ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। सच में तो मुझे मोटिवेट करने में सबसे आगे है। सही कहा तूने, मैं अभी एक बार फिर से जाकर ट्राई करूंगी, इतनी जल्दी हार तो नहीं मानने वाली मैं। नंदिनी इतना बोलकर समर्थ की तरफ देखने लगी। इप्सिता बैठे बैठे बोर हो गई थी, तभी नंदिनी ने कहा, क्या हुआ, तुम्हें ऊपर चलना है क्या? इप्सिता ने धीरे से अपना सिर हिलाया और उसने कहा, हाँ यार चलो चलते हैं ऊपर, वैसे भी फंक्शन तो खत्म ही हो गया है, मैं सोच रही हूँ शावर ले लूँ, वैसे भी हल्दी ऑलमोस्ट सूख गई है और बैठे बैठे मेरी कमर भी अकड़ गई है, और देर बैठी रहूंगी तो दर्द बढ़ जाएगा। नंदिनी ने इप्सिता को उठाकर खड़ा किया। वो स्टेज से उतर रही थी कि उसका लहंगा उसके पैर में फंसने लगा, तभी उदय भी वहां आया और उसने इप्सिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, आराम से ऐशी, उतर जाओगी या फिर मैं गोद लेकर उतार दूं? इप्सिता ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं भाई कोई जरूरत नहीं है, मैं उतर जाऊंगी।
इतना बोलकर वो उतरने ही वाली थी, तभी उदय ने इप्सिता का हाथ थाम लिया। जैसे ही वो स्टेज से उतरी, उसने कहा, क्या तुम्हें अपने रूम में चलना है? चलो हम तुम्हें ले चलते हैं। जैसे ही नंदिनी ने उदय की बात सुनी, उसने कहा, हाँ एक काम करिए, आप इप्सिता को लेकर जाइए, हम अभी बस दो मिनट में आते हैं। इतना बोलकर वो हड़बड़ाते हुए दूसरी तरफ चली गई। उदय ने नंदिनी की तरफ देखा और अपने मन में बोला, अब ये कहाँ चली गई जल्दबाजी में? उदय ने इप्सिता से कहा, आपकी फ्रेंड हमें समझ में नहीं आती, ये हर समय इतनी ज्यादा हड़बड़ाई क्यों रहती हैं? इप्सिता ने बात को टालते हुए कहा, अरे भाई छोड़िए ना आप, वो पागल है। इप्सिता की ये बात सुनकर उदय ने धीमी आवाज में कहा, नहीं पागल तो नहीं, लेकिन हाँ क्यूट तो बहुत है। इप्सिता उदय की बात सुनकर उसकी तरफ घूर कर देखते हुए बोली, कुछ कहा क्या भाई आपने? उदयवीर ने ना में अपना सिर हिलाया, वो उसे उसके रूम में लेकर जाने लगा। वहीं नंदिनी को जैसे ही मौका मिला, वो भागते हुए समर्थ के पास आ गई। वो भी बस वहां से जाने ही वाला था और इसलिए वो अर्पिता की तरफ ही जा रहा था, जिससे कि वो दोनों एक साथ ही वहां से वापस जाएं। नंदिनी ने समर्थ को रोकते हुए कहा, समर्थ एक मिनट रुकिए। समर्थ नंदिनी की बात सुनकर पीछे मुड़ा और उसे देखकर बोला, आप फिर से यहाँ, अब आपको भी मुझसे कुछ कहना है क्या? नंदिनी ने कहा, हाँ कहना तो है, हम उस समय ही आपसे कहने वाले थे, बट आंटी ने हमें बुला लिया तो कहने का मौका ही नहीं मिला। समर्थ नंदिनी की तरफ बड़ी ही हैरानी से देख रहा था, क्योंकि वो इतनी हड़बड़ी में ये सब कुछ बोल रही थी। समर्थ उसकी तरफ बड़ी ही हैरानी से देखने लगा। नंदिनी ने कहा, देखे देखे मैं जानती हूँ, अभी शायद आप मुझे ठीक से जानते नहीं हैं, बट मेरा नाम नंदिनी है और मैं इप्सिता की बेस्ट फ्रेंड हूँ। समर्थ ने जैसे ही उसकी बात सुनी, उसने बड़ी ही सॉफ्ट आवाज में कहा, हमें ये बात पता है, आप हमें अपना इंट्रोडक्शन फिर से क्यों दे रही हैं? नंदिनी ने थोड़ा सा शर्माने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, वो क्योंकि वो क्या है ना समर्थ, एक्चुअली मैं भी आपसे कुछ पूछना चाहती थी, आई रियली लाइक यू, आप मुझे बड़े अच्छे लगे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहती थी कि क्या आप सिंगल हैं, बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन यू। जैसे ही समर्थ ने ये बात सुनी, उसने हैरानी से नंदिनी की तरफ देखते हुए कहा, आप तो बड़ी ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, इतनी जल्दी आपने हमें आई लाइक यू बोल दिया, हम बस आज दूसरी बार ही तो मिले हैं, हम दोनों तो एक दूसरे को जानते भी नहीं, और आप? नंदिनी ने कुछ ज्यादा ही दांत दिखाते हुए कहा, हाँ एक्चुअली वो हम मुंबई में रहते हैं ना, तो उधर सब ऐसे ही चलता है, जो पसंद आया बस बोल दो, नहीं तो फिर कोई और बोल देता है तो चांस भी नहीं मिलता। वो बोल ही रही थी कि समर्थ ने कहा, ओ अच्छा तो आप मुंबई से हैं? नंदिनी ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए समर्थ से पूछा, हाँ मुझे पता है हम ज्यादा नहीं मिले और इतना जानते नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन ही लास्ट इम्प्रेशन होता है, तो बस फर्स्ट इम्प्रेशन में ही आपने मुझे इम्प्रेस कर दिया, और इसीलिए वो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि मैं आपको कैसी लगती हूँ, क्या हम रिलेशनशिप में आ सकते हैं, बिकॉज आप मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, सच बता रही हूँ मैं, अगर हम दोनों रिलेशनशिप में आ गए तो हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा, आप?